Thank you. गीता का कसम खाकर तो वाल्मीकि जी बड़ा क्लियरली बात कर सबसे वक्ता, सबसे वक्ता के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ जब पूछा कुछ होने लगे तो अपने बात से मुकर मर जाए, ये भी कहलाता है सत्य वक्ता। और दूसरा वह बात जो कभी झूठ हो ही नहीं सकता है, जो व्यक्ति बात करे वो तीनों काल में सत्य होगा। भगवान का सत्यम मतम सत्य सत्यम मतम परम सत्यम सत्यात्म सत्य तमाम उनकी जो वाणी होती है वो तीनों काल में सत्य होती है। वो सत्य व्रत या साधु होते हैं, साधुओं की वाणी तीनों काल में सत्य होती है। गौपा जी जो कह दिए हैं वो हमेशा के लिए सत्य है।
क्या है? तो इस प्रकार से और
विद्वान कौन है, विद्वान का परिभाषा क्या है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि विद्वान कौन है, कहते विद्या विद्वान हुआ है जो समभाव से सबको देखता है, सब में भगवान का निर्वाचन करता है और जो समझता है कि सबका संबंध भगवान से है, जो बात समझता है वो विद्वान है। जो विज्ञान को जानता है वो विद्वान, ज्ञान में विज्ञान सब जिसका संबंध भगवान से जानता है वो विद्वान कहलाता है। दसों प्रभु का सबसे सामर्थ्यशाली कौन व्यक्ति है, सामर्थ्यशाली का मतलब यही नहीं कि धन दौलत वाला। आजकल लोग समझते हैं सामर्थ्यशाली के पास 1,000-5,000 रुपया है बैंक में वो सामर्थ्यशाली है, सामर्थ्यशाली का मतलब जो सब कुछ याद कर अपने को भी देने में सक्षम वह है सामर्थ्यशाली। ये ग्राम प्रभु था कि संसार में आज के दिन सबसे सुंदर कौन व्यक्ति है, सुंदरता विभिन्न प्रकार से प्राप्त होती है, एक शारीरिक सुंदरता है, एक आचरण की सुंदरता है, ज्ञान की सुंदरता है, यहां पर वाल्मीकि जी वास्तव में सारे सौंदर्य के संबंध में कह रहे हैं तो सुंदर कौन है। पराम प्रभु था मन को अपने पक्ष में रखने वाला कौन व्यक्ति है, पूरे शरीर में जो मन है बड़ा चंचल है, अर्जुन भी कहते चंचल बिना नोटिस दिए हुए चला जाता है। हम लोग यहाँ के लिए बैठे हुए हैं और पता नहीं किस जगह में कहाँ चला गया, अरे बोले क्या वाला का करना, जब पूछूंगा तो आपका मन बड़ा है चला गया, मन बड़ा तो मन को बस में रखने वाला, जो मन को बस में रख सकता है वो जितेंद्रिय कहलाता है, जो मन को बस में रख सकता है वो अपने इंद्रियों को आसानी से बस में रख सकता है, क्योंकि जो इंद्रियां वो मन के बस में होती है। भगवान गीता में कहते हैं मानव जीव लोक जीव भूत सनातन मन इंद्रिया प्रकृति यांति प्रकृति, संसार में जीव संभव कर रहा है ज्ञान इंद्रिया और उसका जो सेना नायक है वो मन है, तो सेना नायक के साथ यदि सेना नायक को अपने पक्ष में कर ले तो सब सेना अपने आप पक्ष में हो जाएगी, तो मन पक्ष में हो जाए तो सब इंद्रिया अपने आप पक्ष में हो जाएगी। तो मन को पक्ष में रखने वाला कौन व्यक्ति है, त्रेवन प्रश्न है क्रोध जीतने वाला कौन व्यक्ति है, क्रोध पर जो विजय प्राप्त कर लिया जो क्रोध के वश में नहीं होता है बल्कि क्रोध उसके वश में होता है, खुद क्रोध पर विजय प्राप्त करने का यह हुआ यह नहीं क्रोध न होना। आप सब लोग कृपा करके अपने बच्चों को सुला लीजिए, समझते हैं ना मोबाइल पर लोग साइड पर कर लीजिए, तो क्रोध को जीतने का मतलब हुआ कि क्रोध के वश में न होना बल्कि क्रोध को अपने वश में कर लेना, क्रोध न होना ये हो ही नहीं सकता है। और यदि क्रोध नहीं हुआ होगा तो महाभारत युद्ध में इतना लड़ाई में लोगों को मारे नहीं होते, हनुमान जी को क्रोध नहीं हुआ होगा तो लंका को जलाए नहीं होते, क्रोध रखना चाहिए लेकिन को जो क्रोध करता है, जो क्रोध के बल में है, अपने लिए करता है जो क्रोध, तो समझना चाहिए कि उसके एक गुण है। ध्यायतो विषयान् पुंसां संगं युपजायते संगं जायते कामा कामा क्रोध अभिजायते क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति भ्रमा अस्मृति भ्रमो बुद्धिनाशा बुद्धिनाशा प्रणश्यति। क्रोध कहां से उत्पन्न होता है? संग से, जो कोई वस्तु नहीं मिलती है। काम क्रोध उपजायते, जब काम होता है और वस्तु की प्राप्ति हो, इच्छा कुछ वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होती है, अब जो वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो क्रोध आता है। काम जो पैसा होते हैं उनके पास कोई काम है ही नहीं। काम का अर्थ है निगेटिव दृष्टि, निगेटिव दृष्टि तार किसके पास नहीं है, क्रोध को जीतने वाला कौन है? चौथा प्रश्न था, वह कांति मान व्यक्ति जिसके शरीर से कांति निकलती हो, दैवतान व्यक्ति उसके आचरण से, उसके वचन से, उसके शरीर से, वह व्यक्ति कौन है? पंद्रह प्रश्न था कि वह कौन व्यक्ति है जो कभी भी किसी का निंदा ब्रह्मा जी जब सृष्टि किए तो देखे कि एक सुअर जो थी वो मल खा रही थी, तो ब्रह्मा जी हंस पड़े। तो नारद जी का अधिकारी क्यों, क्या बात है, आप क्यों हंस रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा सृष्टि अब सफल हो गया। इसका कैसे? कहा कि जो व्यक्ति निंदा करता है, निंदा का रचना कर करके और सुअर का निंदा कर करके जिसके अंदर अवगुण है उसके अवगुण को अपने पास ले जाए। कर्म का फल यही है, आप यदि किसी का निंदा करोगे तो उसका छुटकारा हो जाएगा उस अवगुण से, और वो अवगुण कहां रहेगा? अपने पास रहेगा। तो ब्रह्मा जी बड़े कूट से निंदकों को और सुअर का, इन दो का रचना कर सके, दोनों का काम है सफाई करना। सुअर सफाई करती है मल खा करके, और निंदक लोग सफाई करते हैं सज्जन पुरुषों का, निंदा करते हैं दुर्जनों का, निंदा नहीं करेंगे, दुर्जनों के साथ नहीं मिल जाएंगे, लेकिन सज्जन का ही दुर्जनों का निंदा होता भी नहीं है, क्या निंदा करेंगे उसका, वो निंदनीय ही है, तो सज्जन लोगों का निंदा होता है। तो कौन वह व्यक्ति है जो किसी का कभी निंदा ना करे? सुलभमा प्रश्न था, वह कौन व्यक्ति है सजा में जिसे कुपित होने पर देवता तो कड़कड़ाने लगते हैं, कांपने लगते हैं? किस प्रकार से जब नारद जी यह प्रश्न किए, तो नारद जी से जब वाल्मीकि जी प्रश्न किए तो वाल्मीकि जी से नारद जी ने कहा कि आप थोड़ा कठिन प्रश्न कर दिए, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं और सोच करके आपको मैं बता दूंगा। तब नारद जी कहते हैं, भवो दुर्लभश्चैव एतया कृता गुणा मुने वक्ष्यामि अहं बुधया तैरुक्तो श्रुतामर। कहते हे बाल्मीकि जी, बड़ा ही सुंदर आपने प्रश्न किया। यह जो प्रश्न है वैसे सुदुर्लभ गुणों का अवधान करेगा जिसका वर्णन सुनने से मनुष्यों का कल्याण होगा और जो मैं बात कहने जा रहा हूं उसको आप ध्यान लगा करके सुनिएगा। तो नारद जी हम सब लोग कह रहे हैं कि ध्यान लगाकर सुनिएगा, कुछ तो आ गया चले गए हम लोग और ब्लड पड़ने वाला है चले गए, ध्यान लगाकर सुनिएगा। नारद जी अब उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं उस व्यक्ति का जिनके गुणों के विषय में एक व्यक्ति, वो व्यक्ति एक हो जिसमें सब गुण होना चाहिए, एक व्यक्ति। नारद जी बड़ा विचार कर करके अपना कंप्यूटर चालू किए और फिर बटन दबाए तो व्यक्ति कौन है, यहां पर कंप्यूटर में एक चीज डालोगे तो उसका 10-15 आएगा, यहां पर 15 चीज डालो तो एक चीज आने वाला है। एक इतना बड़ा कंप्यूटर है नारायण का कंप्यूटर है ना, यहां पर कोई चीज एक शब्द डालो कहा सत कर क्या शब्द में कुछ डालोगे चीज आज मैं खोज रहा था रावण के विषय में, तो रावण ने टाइप किया तो विस्पति द्विवेद टाइप आ गए खुल करके और मैंने कहा कि एक सोसाइटी भी है जिसका नाम है रावण सोसाइटी, हाँ साउथ इंडियन सोसाइटी है वो रावण सोसाइटी। अब लिखिए हम तो ऐसे विभिन्न नाम आ गए 15 यहां पर एक गुण एक व्यक्ति को खोजना है जिसमें इतने गुण आप डालो एक व्यक्ति निकल करके आएगा, कौन व्यक्ति है उस कंप्यूटर में नहीं था, नारद कंप्यूटर में था। नारद जी कहते हैं इक्ष्वाकु वंशम रहो कुल में उत्पन्न बिकले आज के दिन का मतलब भगवान राम आज भी धराधाम पर थे, ये प्रमाणित करता है कि वाल्मीकि रामायण लिखा गया है जब भगवान राम धराधाम पर अपना लीला विहार कर रहे थे तब। तो कहते हैं कि हे ऋषि इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न प्रतापी महाराज के पुत्र हैं जिनका नाम राम है, जिन जिन गुणों का आपने ग्रहण किया है वे सर्वगुण संपन्न है सर्वगुण विधान है, वे ही आज समस्त शक्तियों के स्वामी हैं क्योंकि राम जो है स्वयं भगवान है, तो भगवान से सब शक्तियां निकली हुई हैं, तो उनके गुणों का प्रमुख करने जो सब शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान राम के वाल्मीकि जी थोड़ा पूछे थे लेकिन नारद जब वर्णन करना शुरू किए तो भगवान का खूब आंख बनकर खूब वर्णन किए, यह प्रमाण करता है यह दिखलाता है कि नारद जी को भगवान के चरणों में कितनी श्रद्धा है। जब प्रेम होता है किसी वस्तु से किसी व्यक्ति से तो उसका वर्णन जो व्यक्ति करना शुरू करता है तो मत करिए कितना वर्णन करेगा, खूब वर्णन करेगा, प्रेम होना चाहिए। नारद जी वर्णन करना शुरू किए सर्वप्रथम भगवान के श्री अंगों का वर्णन करने लगे, भगवान राम के श्री अंगों का वर्णन किए, जितना बात उन्होंने प्रश्न किया था उन प्रश्नों का उत्तर एक श्लोक में ही दे दिए मानो कि इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ का प्रतापी पुत्र है जिनका नाम है राम, वे सर्वसंपन्न है सर्वगुण विधान है और समस्त शक्तियों के स्वामी है। उनकी भुजाएं बड़ी है, कहां तक है घुटना, ये भगवान का पहचान है। आजकल जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान हूं और भगवान का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पहले ये देखना चाहिए कि उनका जो हाथ है घुटना तक है कि नहीं। आप लोग नाप तक ना कहा घुटना तक आएगा, बैठने पर आ सकता है, कहां तक आता है, देखो 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 देखो, भगवान नहीं आएगा, नहीं आएगा। जो भगवान है इनका पहला पहचान है, सही पहचान है। एक पहचान ये भी है कि उनका जो हाथ होता है उनके घुटनों तक होता है, अयाम जरूर अयाम उनका बाहू जो होता है विशाल होता है। तो भगवान राम का वैसे ही जो भुजाएं वे घुटने तक लंबी थी, उनका ग्रीवा ये था कि शंख के समान बड़ा सुंदर था, शंख के समान था उनका ग्रीवा। उनका कंधा और छाती विशाल था, विशाल का है कंधा, जिसे कंधा बड़ा होता है वो बड़ा बोझ उठो सकता है, कंधा छोटा हो बहुत नहीं सकता। कंधा और छाती भगवान राम का, हम लोगों का छाती बड़ा नहीं होता, हम छाती बड़ा करते हैं, दिखाते हैं कि हमारा छाती बड़ा है, छोटा छाती है दिखाते हैं छाती बड़ा है, भगवान राम दिखाते नहीं, भगवान कृष्ण दिखाते नहीं, छाती बड़ी है ऑटोमेटिकली, गए गुण है उनकी छाती बड़ी है, उनकी जो कंधा है बड़ा है, उनका ललाट चौड़ा है और बड़े शोभायमान है। हम लोगों का ललाट बहुत छोटा है, कला विशाल है। इसका मतलब नहीं उनका काल उड़ गया था, समझ रहे ना, कितना तो बाल यहां तक चला आता है और कितना होगा इतना चौड़ा हो गया, और ना तो वे बाल से भी जाते हैं, उनके ललाट का चौड़ा है भगवान राम का। तो नारद जी किस अंग का अपनी भांति भ्रमण कर रहे हैं, उनका कंधा और छाती विशाल काय है, उनका मस्तक बड़ा चौड़ा है, शोभायमान है, उनका आंख जो है विशाल का है, विशाल नेत्र वाले हैं, वो आजकल तो काजल लगाते हैं आंख को बड़ा करने के लिए, देखा स्त्रियां सिंगार है, लेकिन कुछ पुरुष लोग लगाते हैं गलत काजल आंख बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन भगवान राम है छोटा, भगवान राम का कृष्ण का आंख देखो तो बड़ा आंख है। ये सब भक्तों को समझना चाहिए, ये भगवान की पहचान है। जो ये मूढ़ लोग आए थे जो भगवान का करके लोगों को भ्रमित करते हैं, कि भगवान का मान कम है, कोई कहे कि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का मान कम होना चाहिए, कोई कहे इंजीनियर तो इंजीनियर का मान कम, पहचान का इंजीनियर है, कोई कहे मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य कुछ मान कम होना चाहिए, कोई मैं भगवान हूं भगवान का मान कम होना चाहिए, और एक तो भगवान का मान कम है, इसे पहचानना चाहिए। उनके शरीर की कांति दरिद्रमान थी, दरिद्रमान है और थोड़ा थोड़ा हरा, हल्का हरा रंग का है, कांति का शरीर जो है वो हल्का रंग का है। नीलाम श्याम कोमलानम सीता समारोहितम भावम आरो महाकाय कारकम नमामिराम तो इस प्रकार से चमकीला उनका शरीर है। जब भगवान चलते हैं तो उनका चाल मनोहर है, मनोहर की मनोहर, जो मन को हर राधा रानी के समय बताया गया है कि राधा चौथी है तो उनका उपनय गजरामी 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 के समान हाथी के समान चर्चा है मक्खी पूर्वक सोचे तो भगवान राम या भगवान कृष्ण जब चौथे हैं तो मन को मोहित कर देता है उनका चार चार भगवान राम का चार होगा मनोहर चार भगवान राम का चार मनोहर है। भगवान कृष्ण जब चौथे थे जाते थे गोचारण करने के लिए तो घर से गोपियां बाहर निकल करके अटलचाओं से गृहियों से भगवान का चार देते भगवान कैसे चौथे हैं जब गोचारण करने जाते भगवान राम के चाल का वर्णन किया गया है कि जब भगवान राम अयोध्या जनकपुर में गए जब जनकपुर के नरनारी भगवान श्री राम के सौंदर्य का वर्णन किए हैं और उसी में किसी ने भगवान श्री राम के चाल का वर्णन किया है कैसा उनका चाल है नारद जी कहते हैं कि बाकी भगवान चाल के मतलब पैर से चलना न कि दूसरा चाल और जाने मन समझना चाहिए अभी मन को हरने वाला होता है चाल चलना वो सिंपल बात है यहाँ पर चाल मतलब चलना उनका शरीर कैसा है न तो ज्यादा लंबे हैं और न छोटे हैं मध्यम है और उनका शरीर सुडौल है कटा कटा बड़ी सुंदर जैसा है पूरा उनका शरीर सुंदर है सुडौल है शरीर वे बड़े प्रतापी हैं उनकी बुद्धि अद्वितीय है उनकी बुद्धि के समान और किसी का बुद्धि नहीं वे धैर्यवान हैं बड़ा से बड़ा विपत्ति आ जाए तो वे धौर धारण करते हैं धैर्यवान का एक उपमा दे सकते हैं जब भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का जब बात कहा गया कि उनका कब राज्याभिषेक होने वाला है लेकिन राज्याभिषेक के बजाय उनको 14 साल का वनवास ला दिया गया दूसरे दिन भगवान राम का भव्य नहीं हुए बस लक्ष्मण भव्य खो दिए और धनुष बाण लेकर तैयार हो गए लड़ाई करने के लिए लेकिन भगवान राम भव्य नहीं हुए भव्य नहीं हुए और ये ऐसे कई घटनाएं हैं जब भगवान राम का भव्य नहीं हुए उनकी वाणी गंभीर और सुमधुर है भगवान राम की वाणी गंभीर और सुमधुर है जो व्यक्ति भगवान राम का वाणी सुनता है वह सुनता ही रह जाता है इस प्रकार से भगवान के शारीरिक कांति का वर्णन किए और उनके बल का वर्णन कर रहे हैं कि वे राम सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में निपुण है और वेदशास्त्र के लिए ज्ञान के लिए अपनी समस्त वैदिक वेद पुराण ज्ञान के वे ज्ञाता है स्वधर्म पालन के वे विशाल है अपने धर्म के पास हम लोग जानते हैं किस प्रकार से अपने स्वधर्म का पुत्र धर्म का वे पालन किए दशरथ जी उनको बनवा के लिए इनाम कर दिए जब भरत जी गए उनको लाने के लिए तो कहते हैं तुम्हारा भी धर्म है और मेरा भी दोनों का एक ही धर्म है हुआ है पिता का आज्ञा पालन करना मेरे लिए जो धर्म है 14 साल तक वन में रहना और तुम्हारे लिए जो धर्म है अयोध्या का राज्य भगवान श्री राम सुधर्मपाल के महान विचार है, उनके समान सुधर्मपाल में कोई नहीं है। भगवान श्री राम वर्णाश्रम धर्म के पालक हैं, उत्सव का रक्षा करते हैं। भगवान श्री राम के राज्य में सब लोग अच्छे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध सब लोग अच्छे थे। भगवान श्री राम के राज्य में सबका रक्षा होता, वे शरणार्थों के रक्षक हैं और असुरों के काल हैं। जो उनके शरण चला जाता है उसका भी रक्षा करते हैं, लेकिन असुरों के लिए वे काल होते हैं। शरण में कोई भी क्या सकता है। जब भीष्म जी आए थे भगवान श्री राम के शरण में, सब लोग मना कर रहे थे, मत रखिए मत रखिए मत रखिए। भगवान ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा कमजोरी यही है कि मेरे शरण में यदि कोई आ जाता है तो मुझसे ना नहीं खाया जाता है। अरे आप तो विभीषण है, और भाई रावण भी मेरे शरण में आ जाएगा तो मुझे उत्तर। तो भगवान राम शरण भक्त हैं, सबको शरण देते हैं, कर्म शरण्यम, जो शरण है उसको शरण देते हैं, और अपनों के लिए वे काल वो काल के लिए हैं। भगवान राम दृढ़ निश्चयी है, तो कोई भी कार्य करते हैं दृढ़ निश्चयता से करते हैं, ये सीखनी चाहिए। हम जो वर्ण कर रहे हैं इसमें दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए, जब तक से दृढ़ निश्चयता नहीं होगी भजन कीर्तन नहीं हो पाएगा। रघु गोस्वामी कहते हैं भक्ति वृद्धि में दृढ़ निश्चयता बहुत जरूरी है, उत्साह निश्चय और या निश्चय दृढ़ निश्चयता होना बहुत जरूरी है। तो भगवान श्री राम दृढ़ निश्चय वे अस्मरण शक्ति से युक्त थे, उनके समान स्मरणीय कोई बहुत याद रखते भगवान श्री राम। वे दयालु हैं, समुद्र के समान गंभीर हैं, समस्त लोगों के प्रिय हैं, वे मित्र और शत्रु में भेद नहीं करते हैं, दोनों को एक समान समझते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन किए तमाम वाल्मीकि जी पूछ रहे हैं कि थोड़ा कृपा करके बतलाइए, ये जो ऐसे गुण निधान है उन्होंने बस क्या किया है, जिनका इतना गुण है उनके संबंध में आप हमें बतलाइए। तो पूरे रामायण का संक्षिप्त में नारद जी वाल्मीकि जी को वर्णन की बतलाए कि किस प्रकार से जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था वहां से शुरू करते हैं। राज्याभिषेक से राज्याभिषेक होने वाला था, सब प्रकार की तैयारियां हो गई थी। देखिए ये तो नारद जी संक्षिप्त में कहते हैं, आजकल तो बहुत संक्षिप्त में रामायण कर देंगे, 10 मिनट में पूरा रामायण कर देंगे। एक राजा थे रुद्र जी, उनकी 3 पत्नियां थी, उनके 4 बेटे हुए, विश्वामित्र जी लेकर के गए, आपका स्वभाव कुमार उनके बाद जनकपुर गए, शादी विवाह हुआ, बाद में आए राजा अभिषेक कहा आया वो मंगला जाकर के कह गए जब मां खराब कर दी, और बाद में कह गई ने राम दशरथ से वचन मांगी जो उनके पास रोड रूप में लगी थी, उसके परिणाम स्वरूप राम को 2 साल का वनवास और भरत को राज मांगा। दशरथ जी नहीं चाहते हुए भी अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए वे ऐसा किए। भगवान श्री राम अयोध्या को छोड़कर के और सिंगेरपुर गए, निशाद वहां से मिले, उसके बाद गंगा पार करके सिंगेरपुर वह जगह है, वहीं पर मृगारी जाकर के भजन किए। नारद जी जब उनको उपदेश दिए थे तो मृगारी जाकर के सिंगेरपुर में भजन किए थे। आज भी मृगारी का भजन स्थल ही है सिंगेरपुर, और सिंगेरपुर बहुत सुंदर रमणीय स्थान है गंगा जी के तट पर। चतुर्भुज आप हैं जब देखे हैं, चलिए इलाहाबाद देखने हैं, 80 किलोमीटर होगा। ऋषि सिंह वहीं के थे, उनकी कथा बाद में आई, उनके नाम से सिंगेरपुर पड़ा जगह। और एक उसके बाद गए चित्रकूट में, भगवान के नाम 12 साल तक चित्रकूट में रहे, और वहां पर एक पर्वत है, क्या नाम कमलगिरी, जो गिरिराज के समान पर्वत है। आज भी हजारों भक्त लोग कमलगिरी पर्वत का परिक्रमा करते हैं, और मैं देखा कि वहां के मंदिर बड़े अच्छे हैं, वृंदावन जैसे मंदिर है, कुंभार मंदिर नहीं है। वो आप कोई भी सामान लेकर के जाओ कुछ नहीं करेंगे, वो अच्छी नहीं देंगे। बड़े सुशील बंदर है, क्योंकि भगवान राम के बंदर है, कृष्ण नक्षत्र के बंदर, राम के बंदर, राम मर्यादा तो स्वतंत्र है, उनके बंदर भी मर्यादा बंदर है, मर्यादा रखते हैं, मर्यादा तो होते नहीं, लेकिन फिर भी लोग ले जाकर सामान देते हैं। एनीवे, भगवान श्री राम जब इस प्रकार से चित्रकूट में गए, चित्रकूट गए, चित्रकूट से पहले बाबा के आश्रम गए, वहां उस समय बिताए, उसके बाद वे चित्रकूट गए। चित्रकूट में भगवान 12 साल निवास किए हैं लक्ष्मण और सीता जी के साथ में। इधर दशरथ जी भगवान श्री राम के विरह में हाराम हाराम कहते हुए अपने शरीर को त्याग दिए। दशरथ जी के मरणोपरांत उनके मंत्री सुमंत जी दशरथ जो उन्होंने हार गए थे, उन लोगों को वहां से बुलाया गया, शायद कई ऑस्ट्रेलिया के कहीं कोई माता रवानी सुना है, कोई बोलता है ऑस्ट्रेलिया, तमाम बोलते हैं कश्मीर में, नहीं ऑस्ट्रेलिया हमारे कश्मीर में। तो उस समय भरत जी और शत्रुघ्न के गए थे अपने ननिहाल, बड़ा अच्छा जोड़ी था, राम लक्ष्मण का जोड़ी और भरत और शत्रुघ्न का जोड़ी। भरत जी को बुलाया गया, भरत जी आए, जब शत्रुघ्न मालूम हुआ विश्व के इतिहास में भरत के समान कोई आज तक भाई नहीं हुआ है, जब यह बात पता चला भरत जी को, तो मालूम के प्राण और केतु निकल गए, क्योंकि भगवान के नाम भरत जी के प्राण, भगवान सबके प्राण है, राम सबके प्राण है, लेकिन भरत का तो प्राण क्या है, भरत बावले हो गए। पिताजी का अंतरिक्ष क्रिया करने के बाद सुमंत आदि मंत्रियों को लेकर के वशिष्ठ आदि गुरुओं और याचकों और ऋषियों को लेकर के भरत जी प्रस्थान किए चित्रकूट की तरफ। जब वे चित्रकूट पहुंचे, राम भरत मिला, बहुत ही हृदय विचार प्रसन्न है, किस प्रकार से दोनों भाइयों में कुछ वार्ता हुई, तदुपरांत ये भगवान श्री राम भरत जी को संतावना दिए और कहे कि नहीं नहीं, आप ही पिताजी का क्या पालन करो, मैं ही पिताजी का क्या पालन करता हूं। किस प्रकार से भगवान का चरण पादों का लेकर के भरत जी वहां से आए। रामो भी पुरुदार शुभ तू नाम अपने चरण पादुका को भस्म को दिए और राज की कोई काम न इच्छित अपने पिता का जो राज था उसका थोड़ा भी ध्यान नहीं किया, बल्कि पिता के आदेश का इच्छा किए, मैं पिता का आदेश पालन करूंगा, मेरे लिए पिता जी का आदेश है वनवास जाने का। और भरत तो कहे निवर्तया जंगल में बिना पादुका के चले, अरे पादुका का वही मैं ले लिया, इतना मैं स्वार्थी हूं। प्रभु फल मूल खाए पृथ्वी पर सहन करें और मैं राजविलास करूंगा, ऐसा भरत श्लोक भी नहीं करते थे। फिर अयोध्या न जाकर के अयोध्या के दूर नंदीग्राम में एक पर्वती बना करके और वहीं पर एक राजा पर्वती में निवास कर रहा है। इस शिक्षा का बात है कि कैसे भगवान के प्रति हम लोगों की भक्ति होनी चाहिए, भरत से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान जंगल में खुले पैर भटक रहे हैं तो भरत जी मैं क्यों राज्य भोग करूं या भोग खाऊं, तो भरत जी नंदी ग्राम में निवास करने लगे। भरत जी वहां पर नंदी ग्राम में हैं, भगवान श्री राम का जब पता चल गया कि राम वहां पर है चित्रकूट में, तो अयोध्या का कोई दूर चित्रकूट ना के ढाई सौ किलोमीटर होगा, तो बहुत लोग जा रहा हूं टाटा लग गया जाने का। भगवान राम को देखिए ये दूषित काल नहीं लग रहा, आप नहीं लग गया, तब भगवान राम वहां से चल दिए और आते आते बीच में विभिन्न प्रकार के ऋषि मानसों से अगस्त देव के भाई अगस्त जी इत्यादि उनसे मिलते हुए शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। अगस्त से दिव्य अस्त्रों का दिव्य अस्त्रों ग्रहण किए, इस प्रकार से विभिन्न लगा रहे हैं। इसका संबंध जो है दंड कारण्य है, दंड कारण्य में भगवान श्री राम परमपति बना करके ये सब नारद जी संक्षिप्त में कथाएं बनता है, परमपति बना करके और वहीं पर रहने लगे। असुरों का अगर राज्य था, सब ऋषि मिलकर के भगवान श्री राम से प्रार्थना की थी, दंड कारण्य में प्रवेश कर रहे थे भगवान श्री राम उस समय, सब लोग प्रार्थना किए थे हे प्रभु आप हम लोगों को इन असुरों से मुक्ति दिलाइए। भगवान श्री राम वचन दे दिए थे ऋषियों को और अग्नि देव से प्रार्थना किए कि मैं असुरों को वध करने जा रहा हूं, इसलिए आप सीता जी का देखभाल करना और एक छाया सीता प्राप्त करके उस छाया सीता के साथ में दंड कारण्य में वे निवास कर रहे थे। एक दिन की बात है, राम की बहन शूर्पणखा आई और वह जब राम को देखी तो मोहित हो गई और अंत लक्ष्मण जी को उसका नाक काटना पड़ा। नाक काट ली लक्ष्मण जी, शूर्पणखा गई राम की बहन थी, वहां जाकर के शूर्पणखा अपने भाई को सब बात बताई तो बड़े वीर सेना लोग आए, बहुत लड़ाई हुआ और बहुत लोग मारे गए। राम के प्रताप को राम समझ रहा था तो सोचा, बल्कि शूर्पणखा ने उपाय भी बताया था कि यदि उसको मारना है तो उसका जो दिल है वह लगा है उसके पत्नी, यदि किसी प्रकार से उसके पत्नी को से आप भैया अलग कर दोगे तो अपने आप 50% नंबर जाएगा, फिर तो उसको मारना बड़ा आसान होगा। इस प्रकार से कुमतीपूर्ण बुद्धि सुरमाना ने रावण को दिया, और जैसा कि मैंने कल बताया था कि रावण और कुंभकर्ण का जो अवतार था वो काम का अवतार था, तो कामातु रावण तक्षण प्लान बनाना शुरू किया और प्लान के बीच में मारिच मामा को जगा। मारिच भी भगवान राम के बाण का मजा चक दिए थे, तो पहले तो बहुत रावण को मारने का प्रयास किए लेकिन जब रावण नहीं माना तो मारिच ने कहा कि राम के हाथ से मरने की बजाय राम के हाथ मरना अच्छा होगा। तब राम के आदेशानुसार मारिच सोने का हरण बन करके आए। सीता जी जब सोने का हरण देखी तो मुक्त हो गई और उस सेवन के हरण को प्राप्त करना चाहती थी। भगवान राम विभिन्न प्रकार का अवसर ये बदलाने का प्रयास किए कि अवसर से मैंने कभी सोने के हरण का न देखा है न सुना है, ये कुछ हो सकता है, ये अपूर्व की माया होगी। लेकिन बस सीता जी का मैं एक चीज आपसे मांग रहे हूं, अवसर से कुछ भी नहीं मांगू, एक चीज मांग रहे आप ये भी नहीं कर सकते हैं। तो राम हम सब गए मारिच को मारने के लिए और आपको जानते हैं बाद में क्या हुआ। तब राम और सीता जी का चोर किया, जटायु और रावण से युद्ध हुआ। जब राम और रावण आए सीता जी को वहां न प्राप्त किए तो ढूंढ रहे थे, वनों में वृक्षों से पूछ रहे थे, लता पवनों से पूछ रहे थे कि आपने सीता जी को देखा है, जनक मंदिर में देखा है, किस प्रकार से पूछते हुए जा रहे थे। तो जटायु जी को देखे, जटायु जी पूरा बात बताए और जटायु जी बताए कि आप जाइए और सेवली के पास जाइए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जटायु जी का अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान श्री राम वहां से आगे बढ़े तो उन्हें एक असुर मिला। क्या नाम था उसका? क्रिकेट में कवल नाम का असुर मिला, उसका भी उद्धार किए भगवान श्री राम और लक्ष्मण। पापा में कवन पहले एक देवता था लेकिन असुर बन चुका था, उसका उद्धार हुआ और उसका शरीर जलाया जा रहा था तो उसने भी वही बात बताया, जानकारी बताया कि आप जाइए और सेवरी से मिलिए और वह आपके पत्नी का पता बताएगी। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम शैली के आश्रम में गए, का मुक्ति कर करके शैली के आश्रम में गए। शैली भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी, वह अपने गुरु के आदेशानुसार वहां पर निवास कर रही थी और भगवान राम का प्रतीक्षा कर रही थी कि राम कब आएंगे। अपना पूरा जीवन शैली निकाल दिया भगवान राम के प्रतीक्षा में कि भगवान कब आएंगे। जब भगवान श्री राम वहां पर आए तो राम का सेवा सत्कार कर रहे थे, अब जानते हैं शिवरी भिलनी थी बेचारी लेकिन भगवान का भजन कर रही थी। तो भगवान का भजन कोई कर सकता है, भगवान के भजन पर सबका अधिकार है। क्या प्रभु राम अरविंद पुरुष का आवीर गंगा भगवान का नाम लेता है सुद्यंती, वह नाम व्यक्ति को शुद्ध कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। वहीं पर मातला सुग्रीव बात करते हैं, आप उनसे दोस्ती कीजिए और वे आपकी पत्नी का पता लगा सकते हैं। तो शिवरी के अनुसार वे गए, शिवरी कहां के अनुसार उधर सुग्रीव जाए तो देख लिए कि दो वीर आ रहे हैं, धनुष बाण धारण किए हुए हैं और इधर ही इधर आ रहे हैं। तो उन लोगों का डाउट हुआ कि अपने हैं कौन, हो सकता है बाली भेज रहा है, क्या कर रहा है, ये कौन है। तो मंगासुर के तट पर सुग्रीव जी के जो मंत्री थे हनुमान जी, बड़े चतुराई थे, एक ब्राह्मण का वेद धारण कर करके आए और राम लक्ष्मण से पूछने लगे कि आप लोग कौन हैं, आप लोग इधर क्या कर रहे हैं। पहले अपना पता नहीं बताया, पहले उन लोगों का पता पूछे। जब पूरा मालूम हो गया कि क्षत्रिय कुमार हैं, अपने पत्नी के विरह में इधर ढूंढ रहे हैं और महाराज सुग्रीव से मिलना चाहते हैं, तब हनुमान जी अपने रूप में आ गए और कहे कि मैं कौन पुत्र हनुमान हूं, मैं महाराज सुग्रीव का मंत्री हूं और महाराज सुग्रीव ने हमको भेजा है आप लोगों को टकराने के लिए। तब पहाड़ और चढ़ाई बहुत ऊंची थी, भगवान राम और लक्ष्मण जी को छिड़क कैसे पाएंगे, हनुमान जी का चिंता मत कीजिए, आप लोग हमारे हाथ पर आ जाइए। तब भगवान राम तो जा रहे थे, लक्ष्मण जी हाथ खींच दिए कि भैया मत जाइए मत जाइए, ये लगता है कि मायावियों का कोई माया है, कैसे प्रत्येक नहीं रहे हैं, पहले पंडित जी बने थे अभी वो मदर बन गए, और न जान न पहचान, सभी बैठने जा रहे हो पता नहीं कहां पर लेके चला जाए। भगवान राम ने कहा देखो दो कारण है जिससे मैं विश्वास पर कर रहा हूं। पहला कारण है कि माता शिवरी ने कहा था कि सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी हैं, वे आप लोगों को मिलेंगे और आपको सुग्रीव तक ले जाएंगे। दूसरा बात, जब ये आप लोग आए थे, जो परिचय दिए थे, तो ब्राह्मण के रूप में थे, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता है, ब्राह्मण झूठ नहीं बोलता है। तो दो कारण है विश्वास करने का। तब ब्राह्मण के साथ लक्ष्मण चढ़े, इस प्रकार सुग्रीव से दोस्ती हुई, बाली मारे गए, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। कुछ समय के बाद, चतुर्मास के बाद सब बंदर निकले पता लगाने के लिए। संपादी जी मिले और संपादी जी बताए रावण का पता, रावण का हरा है, और जामवंत जी बताए हनुमान जी के शक्ति का स्मरण कराए और हनुमान जी लंका गए, जाकर के विभीषण से मिले, अशोक वाटिका का पता लगाए, माता पिता का दर्शन किए, माता पिता को भगवान राम का संदेश बताए, फिर ब्रह्मा जी के ब्रह्मपास में आया, वे बांधे गए, वे लंका को जला करके आकर के भगवान श्री राम से माता सीता का समाचार बताए, फिर भगवान श्री राम समस्त बंदर सेनाओं को लेकर के वे समुद्र तट पर गए, जहां पर वे अपने बाण से समुद्र को प्रचलित कर दिए और बाद में समुद्र पर पुल बांधा गया। भगवान राम गए लंका में, रावण को मारे, सीता जी को के साथ में पुष्पक विमान से आए। आते समय भरद्वाज मुनि को और गुहा जाकर गुहा को लेकर के भरद्वाज आश्रम पर आए और हनुमान जी को एडवांस पार्टी बना करके नंदीग्राम में, हनुमान जी एडवांस पार्टी बनकर नंदीग्राम आए, बाद में भगवान श्री राम नंदीग्राम आए और अपने जटाधिपति बाल को कटा करके उसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार से भगवान श्री राम राजा बने और भगवान श्री राम के राज नारद जी किए हैं कि भगवान श्री राम का जो राज्य था, राम के राज्य में सब लोग प्रसन्न थे, सब लोग सुखी थे, सब लोग संतुष्ट थे, हृष्ट पुष्ट थे, कोई व्यक्ति रोगी नहीं था, रोग से सब मुक्त थे, कभी अकाल नहीं पड़ता था, कोई भी बेटा अपने बाप के जीवित रहते नहीं मरता था, कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती थी भगवान राम के राज्य में, सब स्त्रियां पतिव्रता होती थी, राम के राज्य में आग लगने का कोई भय नहीं था, न तो किसी प्राणी को जल में डूबने का भय था, न तो किसी प्रकार का ज्वर और रोग होता था। जो लोग राम के राज्य में नहीं थे, धन दौलत प्रचुर मात्रा में थी राम के राज्य में, नदियों में, जलाशयों में जल थे, वृक्षों में फल थे, गांवों के आसन में दूध थे, इस प्रकार से भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक इस धराधाम पर राज्य किए। इसलिए लोग राम राज चाहते हैं, राम तो नहीं चाहते हैं, राम राज चाहते हैं। इस प्रकार से संक्षिप्त में नारद जी भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का कथा पता है, शुरू से लेकर के स्थान तक पहले संचालन हुआ लेकिन हो नहीं पाया, बाद में हो गया, और नारद जी का सम्मान के वाल्मीकि जी सर्वप्रथम नारद जी वाल्मीकि जी के आश्रम से चले गए, अपने शिष्य भरद्वाज के साथ में वाल्मीकि मुनि तपसा नदी के किनारे स्नान करने के लिए संध्या का समय था, लगभग दोपहर का संध्या, जब स्नान करने गए, स्नान कर करके ज्ञान वर्षा होने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुला और एक बहुली दोनों का आश्रम थे और मिलन के लिए नजदीक आ रहे थे, तो तब से एक बहेलिया एक बाण से बहुली का पद कर दिया, बेचारी वो बहुली भी कुछ पकाने लगी अपने पति के मृत्यु से। वाल्मीकि सब देख रहे थे और वाल्मीकि जी से रहा नहीं गया, वाल्मीकि जी एक श्राप दे दिए, कभी मान प्रतिष्ठा सौ समा शांति समा यह सौचम मिथुना यह सौचम मिथुना एकम बदती काम कामातुर कौन था बहुला था, वैसे उससे मार करके इसे शांति को भंग किया, इसे मैं श्राप देता हूं कि तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। जब वाल्मीकि श्राप देगी बहुला को, सॉरी उस विताप को, बहेलिए को, तो उनका मन बड़ा क्षीण हो गया कि उस श्राप देने से उसका सौ का विभव का वो क्षय हो गया। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, किसी का निंदा करने से, गाली देने से, व्यर्थ का पाप करने से हमारी भक्ति क्षय होती है। वाल्मीकि जी का सब क्षय हो गया और वे बड़े दुखित हो गए, पीड़ित हो गए कि हाय हाय मुझसे ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों किया। लेकिन उसी समय जो श्राप दिए थे वह एक श्लोक के रूप में आया, जो 8 अक्षरों में बंधा हुआ था, जो संस्कृत के श्लोक होते हैं उसको तोड़ना होगा तो 8 अक्षर होते हैं, 8, 8, 16, 32 अक्षर का एक श्लोक होता है, 8 अक्षर होते हैं, तो बड़ा सुंदर पद बहुत हुआ। नारद जी आदेश दिए थे वाल्मीकि जी को कि इसका विकास रचना कीजिए, उस पुरुष का उनके विषय में पूछा, उसके जीवनी का बायोग्राफी आप लिखिए, तो वाल्मीकि सोच रहे थे मैं गद में हूं कि पद में हूं, तो तब से उनके मुंह से जो श्लोक निकल गया वह बस उतर मिल गया, काव्य के रूप में पद के रूप में उसे लिखना वो निर्णय कर लिए थे। इस प्रकार से स्नान कर करने पर आश्रम आए, लेकिन उनका मन बड़ा धैर्य था, सब शिष्य लोग आगे चारों तरफ। लेकिन फिर वाल्मीकि जी बड़े सुखी थे उसी समय ब्रह्मा जी, हमें हंस पर सवार होकर के ब्रह्मा जी वाल्मीकि के आश्रम आए। वाल्मीकि जी अपने शिष्यों के साथ में खड़ा होकर के ब्रह्मा जी का आह्वान किए, उनका सत्कार किए। ब्रह्मा जी देखे वाल्मीकि जी का मुखाग्नि कि वो कैसे खिन्न हो गए हैं, तो पूछे उनके खिन्नता का कारण क्या बात है, आप क्यों दुखी हैं। तो वाल्मीकि जी पूरा बात बताए कि उनके दुख का कारण क्या है। तो ब्रह्मा जी हंस पड़े और ब्रह्मा जी हंस कर कहते हैं कि हे वाल्मीकि, यह सब काम मैंने किया है, ये जो आपके मुंह से जो वाणी आ रही वो मेरे सोचे, मैं ही बोला होगा, इसमें आपका कुछ भी दोष नहीं है, सब मैंने कराया, क्योंकि मैं चाहता था कि आप इस काव्य का रचना करें जिसका संक्षिप्त वर्णन आपको नारायण कर सके। इसके रचना के लिए मैं आपको दिव्य दृष्टि देता, जिस दिव्य दृष्टि के चलते आप भगवान श्री राम के समस्त लीलाओं को समझ सकते हैं। क्योंकि नारद जी केवल शुद्ध रूप में बताए थे, संक्षिप्त में बताए थे, बाद में ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वाल्मीकि जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। सक्षम है ये दिव्य दृष्टि देने में, जो महाभारत युद्ध की तैयारी हो चुकी थी उस समय अंतिम बार व्यासदेव आए थे धृतराष्ट्र को बुद्धि देने के लिए। और धृतराष्ट्र कहते हैं, पुत्र तुम्हें मालूम नहीं है कि युद्ध में क्या होगा, वैसी घटना घटेगी जो कभी समझ सोच भी नहीं सकते। वाल्मीकि जी बहुत मनाए करे, सॉरी व्यासदेव मनाए करे धृतराष्ट्र कांड को मान ले जाए, तो फिक्स हो गए कि लड़ाई होना ही है। व्यासदेव धृतराष्ट्र कहा कि ठीक है, तो तुम्हारी यही इच्छा है तो कहो तो मैं तुमको आंख दे देता, तुम्हें वो दृष्टि दे दूंगा कि तुम यहां बैठे बैठे पूरा देख सकते हो कि लड़ाई कैसे हो रही, कौन मारना है कौन मरना है। धृतराष्ट्र ने कहा कि वो आंख आप आज दे ही देंगे, अरे देना ही ना तो पहले दे रहे अच्छा होता है, और जगह क्या करेंगे, अरे मैं कभी देखा नहीं तो दुर्योधन कैसा लगता है देखने में और युधिष्ठिर कैसे लगते हैं देखने में, मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा कि मेरे सौ बेटे मैं इतना जानता हूं लेकिन मैं पहचान नहीं कर पाऊं मेरा बेटा, लेकिन फिर भी ये जानने की मेरी इच्छा है तो वहां पर क्या हो रहा है। तो हे व्यासदेव आप कृपा करके ये अंतिम दृष्टि हमारे सेक्रेटरी जो है संजय संजय को दे दीजिए। तो व्यासदेव वो दिव्य दृष्टि संजय को दे दिए थे, इसीलिए चित्रा पूछते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संविधान उत्सव माम का पांडव शैव किम अवृत संजय। संजय भाई तुम देखो थोड़ा देखकर बताओ कि धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में हमारे बेटे और पांडवों के बेटे ने क्या किया, बताओ देखकर। तो मैं जिस दृष्टि का बात कर रहा था वैसे ही ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को दिव्य दृष्टि दिए, उस दिव्य दृष्टि से वाल्मीकि जी समस्त लीलाओं को देख सकते थे। जो लीलाएं भगवान श्री राम और सीता के बीच में हुई थी वो भी देख सकते उस दृष्टि से। इसीलिए वाल्मीकि जी जब रामायण का पूरा रचना किए नारद जी से सूत्र के रूप में प्राप्त किए और ब्रह्मा जी से दिव्य दृष्टि प्राप्त किए, तदुपरांत उन्होंने रामायण का रचना किया। देखिए दोनों ने कहा उनको राम चरित्र श्रुतम कहते हे मुनि सप्तमा ऋषि सप्तमा हे ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हे वाल्मीकि जी रामस्य चरितम् कृतस्मं कुरु आप कृपा करके राम के चरित्रों का रचना कीजिए तो ऋषि सप्तमा क्योंकि आप ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं धर्मानुभवत लोके रामस्य धीमता भगवान श्री राम इस संसार में धौर्यवान और धर्मान पुरुष हैं उनके ही जीवनी को आप लिखे यथा से नारद स्व जैसा कि आपने नारद से सुना है क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान राम के लीलाओं के विषय में कुछ नहीं बताए क्यों दिव्य दृष्टि दिए बस राम के लीलाओं का वर्णन नारद ने किया इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं यथा इस प्रकार से ते आपने नारद श्रोतम जैसा आपने नारद से सुना है वैसा ही ग्रहण कीजिए इस प्रकार से वाल्मीकि जी रामायण काव्य का रचना करना प्रारंभ किए 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि जी रामायण काव्य का रचना किए जब वाल्मीकि जी रामायण काव्य का रचना कर रहे थे देखिए कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ वहां तक कथा नारद बदला और जब रचना करने लगे तो उस समय से लेकर के सीता जी को भगवान बांधे भेज दिए थे लोग उसका जन्म हो चुका था तब अब रचना समाप्त हुई लोग बड़े भी हो गए थे तो इस प्रकार से जब रामायण काव्य की रचना वाल्मीकि जी कर लिए तो उनके मन में चिंता हुई कि लोक कल्याण के लिए था लोक कल्याण साधु महात्मा जो है उनका लक्ष्य होता है लोक कल्याण तो वाल्मीकि जी भी रामायण का रचना किए थे लोक कल्याण के लिए तो लोक कल्याण कैसे होगा इसका प्रचार होना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रूपाजी लोक कल्याण के लिए इस काम में एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी आचार गण है लोक कल्याण के लिए तो पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था पहले पेपर नहीं थे ऐसे ऐसे किताब बन गया पहले किताब नहीं था तो पहले इन शास्त्रों को श्रुति कहता था श्रुति स्मृति गुरु से शिष्य सुनते थे उसको याद करते थे और बाद में सुनाते थे तो वाल्मीकि जी ऐसा ही सोच रहे थे कि इसका प्रचार कैसे हो लोग करने आ चाहिए ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो उसी समय लॉ और कुश आए सुबह का समय था संध्या बंधन करने के बाद सुबह के संध्या कैसे जाते करने के बाद हमारे साथ वाल्मीकि जी सप्ताह नदी के किनारे अपने आश्रम में बैठे हुए थे लॉ कुश आए गुरुदेव को प्रणाम किए ग्रहण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करते ही वाल्मीकि जी के शरीर में एक शक्ति का संचार हुआ और जो वाल्मीकि के बाद जो ग्रंथ था किसका प्रचार कौन करेगा तुरंत उनको उत्तर मिल गया क्योंकि लौह पुरुष से अच्छा कौन हो सकता है जो प्रचार कर सके लौह पुरुष भगवान श्री राम के बेटे हैं तो स्वाभाविक है कि वे लोग अच्छी तरह से इसका वर्णन कर सकते हैं उनसे अच्छा कोई वर्णन नहीं कर सकता है ज्ञान में अनजान में कैसे जब व्यासदेव भी भागवत महापुराण का रचना किए तो भगवान से यही प्रार्थना किए थे मुझे एक ऐसा पुत्र हो जो कि भागवत का प्रचार कर सके तब तो उनकी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप सुखदेव गोस्वामी आए थे और सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही जन्म में चले गए अब ब्याह दे दो, परेशान कर दे तेरे बाप का। मैं भगवान से प्रार्थना किया कि ऐसे बेटे के लिए जो इसका प्रचार करे, और अभी से कम हाजिर हो गया जंगल में चले गए। जो मेरी रचना है यह कोई समान रचना नहीं है। यदि भगवान इस पुत्र को दिए हैं प्रचार करने के लिए तो जरूर प्रचार होगा। और व्यास जो अपने शिष्यों को भेजे भागवतम से दो श्लोक दिए, बस 18,000 श्लोक है उसमें दो श्लोक दिए। और ये जो व्यास देव के शिष्य हैं इन दो श्लोकों का जा करके दान कर रहे थे। वह दो श्लोक था, यह एक श्लोक था जिसमें भगवान के कृपा का वर्णन किया गया था, भगवान की दया का। अहो बकीयम संकाल भूत, अरे उस बकीय को देखिए, उस बगुले के बहन बकासुर की बहन जो है सुतना, अरे उसको था देखिए, अहो बकीयम संकाल भूत, वह बकीय बकासुर की बहन सुतना अपने आसन में कालकूट जल पोटेशियम साइनाइड लगा करके गई थी कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन धात्री का रूप धारण कर गई थी, भाई मां का रूप धारण कर गई थी, उसको भी भगवान ने धात्री का पद दे दिया। यशोदा मैया का पद दे दिया, तो कौवा दयालु शरण उन भगवान से और कौन दयालु हो सकता है जिनके शरण में हम जाए। एक यह श्लोक था भगवान की दया का वर्णन किया गया, जो पीठ देने गया था उसको भगवान यशोदा मैया का फल दे दिए, तो उनसे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है। और दूसरा श्लोक का कौन कौन से बड़ा की भगवान के सौंदर्य का वर्णन था, भगवान जो गोचारण कर करके आ रहे थे, बड़ा पीड़ा नगर रहो, भगवान मूर्ख धारण किए हुए हैं, नगर रहो है भगवान रंगावेरु, अपने हाथों में अपने अवरों से अपने मुरली को लगाए हैं, आंसरे को लगाए हैं, और उनके क्षेत्रों पर अपने अंगुलियों से ताल छेदते काम छेड़ते हुए विभिन्न प्रकार का नृत्य गृत करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान के सुंदर सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और दो श्लोक सुन करके सुखदेव गोस्वामी बेहद हो गए कि कौन को किसने रचना किया है। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी ने, गुरु जी का नाम क्या है, क्या है, अरे समझदार जी है। तब आए सुखदेव गोस्वामी और व्यास जी से पूरा भागवत कथा सुने और बाद में जाकर के बलजीत महाराज को उसका उपदेश दिए। तो दो श्लोक सुखदेव गोस्वामी के जीवन को बदल दिया था। उसी प्रकार से लोग मिले कि प्रचार करना था, तो उन्हें पहला प्रचार करना था भगवान राम के लीलाओं का। और वाल्मीकि जी बतलाए थे कि जाओ तुम लोग प्रचार करो, और जब तुम लोग अयोध्या जाना तो वहां पर क्या प्रचार करना वो बतलाए थे। और बतलाए थे अयोध्या ये नहीं चीज का प्रचार करना, सीता के दुख का तुम लोग वर्णन करना और कुछ मत करना। लोग उस बिट्ठू से निकले, कानपुर से निकले अयोध्या, कितना दूर है, 50 करते करते आ रहे थे अयोध्या। जब आए तो अयोध्या वासियों को टोंट मार मार कर करके वह कथा सुनाने लगे सीता जी के विषय में कि सीता जी का जीवन कैसा था और किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही थी। और लोग उसके द्वारा जब यह बात जब कहलाया जा रहा था तो सब नगरवासी ये सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। इस प्रकार से भगवान राम भी सुन लिए, तो भगवान राम बुलाए लोगों को अपने राजदरबार में। वे सब लोग दुखी थे, लेकिन जब राम कथा रामदरबार में लोग राम कथा पूरा सुनाए, पूरा राम कथा सुनाए, तो सब लोगों का दुख दूर हो गया। संसार में कृष्ण कथा राम कथा यदि सुनाई जाए तो सबकी व्यथा दूर हो जाएगी। यदि व्यथा है तो इसलिए है कि हम लोग राम कथा या कृष्ण कथा सुन नहीं पाते। प्राण यदि राम कथा और कृष्ण कथा सुने तो जिस प्रकार से भगवान राम की व्यथा शुरू हो गई और वासियों की व्यथा शुरू हो गई, उसी प्रकार से सबकी व्यथा दूर हो सकती है। सामने वाल्मीकि जी इस बात को वही छोड़ करके अब साकेत नगरी और का वर्णन किए कि किस प्रकार की अयोध्या है। अयोध्या का सुंदर वर्णन किए, महाराज दशरथ के राज्य का वर्णन किए, वहां के मंत्रियों और सैनिक गुरु ऋषि लोग थे उन सब लोगों का विवरण किए, इस ग्रंथ किए। लेकिन वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि महाराज दशरथ के राज में सब कुछ था, सब चौकोर से उनका राज सुरक्षित था, उनके राज में जो गलियां थी, जो हाईवे थे, सेंटेड हाईवे थे, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे दोनों तरफ, विभिन्न राज्यों से राजा व्यापारी लोग आते थे अपना कर चुकाने के लिए, महाराज दशरथ का दर्शन करने के लिए। वहां के घोड़ों का वर्णन किया गया है, हाथियों का वर्णन किया गया है, अटालिकाओं का वर्णन किया गया है, किस प्रकार के हीरे ज्वाहरात से जड़े हुए अटालिकाएं थी। महाराज दशरथ के राज्य में सब प्रजा सुखी थे, सब लोग सुखी थे, लेकिन महाराज दशरथ जो थे वे बड़े दुखी थे। तो महाराज दशरथ एक बार निर्णय किए कि हमें कुछ करना चाहिए। उनके सुख का कारण था उन्हें कोई संतान नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो कुछ करना चाहते थे। तो एक दिन गुरु वशिष्ठ विद्यालय को बुलाए और बुलाने के बाद गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूंगा। जब वशिष्ठ इत्यादि वामदेव जब सुने महाराज के संकल्प को, उनके संकल्प को बड़ा सराहा। किसी भी रूप से कोई भगवान का भजन करता है तो सराहनीय है। काम करो राम वा मुख काम उदारी पेड़ भक्ति योगे न दे सकोई का परम। कोई किसी भाव से अकाम बिना काम आते या सर्व काम हुआ या सब काम अकाम सर्व काम हुआ मुख काम उदारी चाहे मुक्ति की भी काम आ क्यों ना हो मुख काम उदारी यही सकोई का परम। परम पुरुष का भजन करता है किसी भी कामना से उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो भी चाहे जैसी कामना, तकलीफ है कि हम लोग उन परम पुरुष का भजन नहीं करते। कामनाएं बहुत है लेकिन भजन नहीं करते। यदि भजन करें कामनाओं के साथ में, हालांकि जो कामनाओं के साथ भजन करता है ठीक है, वह व्यक्ति चित्रविदा जनते मामला शुक्र था और शुक्र व्यक्ति है, पैक व्यक्ति है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि भौतिक जो कामनाएं हैं, भौतिक कामनाएं जो है वो सदूर है। यहां तक कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी हो जाए वो अभी सदूर है। भगवान के अलावा और कोई वस्तु मांगना ये बुद्धिमान नहीं है। कहानी याद आ रही है बार एक स्त्री थी, वो जन्नत से लकड़ी काट कर लाती थी और अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन थोड़ा देर हो गया, उसको बहुत सूखा लकड़ी मिल गया तो थोड़ा लालच से पड़ गया, तो लकड़ी को बांध ली और लकड़ी लेकर के आ गई थी। शाम का समय था, बहुत अंधेरा पड़ा हो गया, उसे ठोकर लग गया और उसका लकड़ी गिर गया और कोई था नहीं, सब लोग चले गए थे। तो बेचारी बड़ी दुखी थी, उसने सुना था कि जब यदि कोई किसी का सहारा नहीं होता है तो भगवान सबके सहारा होते हैं। तो बड़े प्रीति भाव से उसने भगवान को पुकारा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान आ गए और कहे कि माता बढ़िया करती है कि भगवान आप बड़े दयालु प्राप्त किया, आप बड़े दयालु हैं, आप कितने दयालु हैं, आप महान हैं, जैसा मैंने सुना था ठीक वैसा ही हुआ। भगवान आप आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने कहा माता को क्या दे बताइए मैं क्या। तो बुढ़िया ने कहा भगवान ये मेरा ये बोझ गिर गया है लकड़ी, ये उठा करके मेरे सिर पर रख दीजिए। क्या बुद्धि है, वो बोझ गिर गया है, भगवान की कृपा से है और संसार का बोझ गिर गया है। और हम भगवान के पास जाते हैं, धन संपत्ति घर आए जय जगदीश करे, फिर बोझ बढ़ता ये करते हैं ना। भगवान के पास जाकर ये नहीं करना चाहिए। अरे बुढ़िया कहे तो भगवान चाहे उसको लकड़ी बहन दिए होते, अरे और तो मुक्ति दे दिए होते, लेकिन क्या उसने माना। इसे कहते हैं कुंजर स्नान, हाथी का स्नान। हाथी आता है पानी में, खूब स्नान करता है, खूब स्नान करता है और बाहर आने का करता है, फिर धूल डालना शुरू करता है। तो स्नान क्या करता है, ठीक वैसे हैं भगवान कुछ भी दे सकते हैं। ध्रुव महाराज भजन किए, उनकी कामना थी उन्हें एक ऐसा राज मिले जो उनके दादा के राज से ही बड़ा हो, लेकिन भजन किए, भजन करते शुद्ध हो गए थे और जब भगवान आए तुम्हें गलानी हो रही थी कि हाय हाय मैं क्यों ऐसा वस्तु मांगा वो टूटे हुए कांच के समान है, संसारिक वस्तु में टूटे हुए कांच के समान है। तो छह मंगूर है छेड़े पूरे सर्वलोकम विसंति एवं त्रैधर्म प्रकमना गता संकामना मालवंते। संसार की इच्छाएं कभी कभी नहीं हो सकती है, इसलिए तो दिमाग वही है जो भगवान का भजन करे तो भगवान को मांगे और कोई अन्य वस्तु न मांगे। तो किसी प्रकार से भजन कोई करे, तत्रति यज्ञ करना है अश्विन यज्ञ, उस समय यज्ञ जो धर्म का कृते अध्याय को विष्णु त्रेतायाम जतान कई बार बड़े बढ़ चल जाया परोपकार के दम सज्जु में जो तपस्या कर करके भगवान को पसंद करते थे, त्रेता में लोग यज्ञ करते थे, द्वापर में घर घर में भगवान की पूजा होती थी, करो कल हर कीर्तन और कलयुग में नाम संकीर्तन है। तो यज्ञ था उत्तरदा जी के लिए, इसलिए वे यज्ञ करना चाहते थे। और यज्ञ जो होता है बाप देव बराहा बाप देव को प्रसन्न करने यज्ञ थे। तो किसी प्रकार से भगवान को यदि कोई प्रसन्न करता है तो अच्छा ही कार्य किसी भी रूप से। दशरथ जी तो यज्ञ कर रहे थे भगवान की प्राप्ति के लिए, तो गाना ही क्या है। तो किसी जो भजन करें तो भजन एक काम के लिए करनी चाहिए, वह काम है भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान दुख और भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं, हम लोग सिर्फ वर्तमान जानते हैं, भविष्य को देखे नहीं है, भूत को भूल चुके हैं। इसलिए बुद्धिमान होना चाहिए कि हम भगवान को मान लें, भगवान सब कुछ जानते हैं और समय के अनुसार सब भगवान देंगे। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करेंगे। कल की जो कथा होगी दशरथ जी का पुत्र प्राप्ति के लिए रजिस्ट्रेशन को बुलाना, यज्ञ कराना, पुत्र की प्राप्ति, हाँ नहीं, यज्ञ कराना और असुर रावण इत्यादि का जन्म, रावण इत्यादि का अत्याचार और देवताओं को भगवान के पास जाना और भगवान का आदेश यहाँ पर कल होगा और परसों जो होगा भगवान राम का जन्म का धन्यवाद हरे कृष्ण कृष्ण माइक तो भाई माइक पर कहाँ गया ये नहीं चल रहा है कहाँ चल रहा है पांच मिनट और बढ़ गई है बहुत परेशान से समस्या कर रही है पांच मिनट और समस्या कर रही है इस माइक और पता होता करना डेली परेशान है
Thank you. कम से कम जैसे प्रसाद देंगे। और कल जल्दी आइए, समय से पहले आइए। देखा कि सभा समय के बाद आप लोग बना रहे हैं, समय मिलता है।